نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ألف مرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رمضان مبارک بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جمعرات پر، اسی سلسلے میں چند باتیں پھر عرض کرتے ہیں. رمضان مبارک کتنا قیمتی اور کتنے عظیم مہینہ ہے ہمارے لیے، کہ اس کی اگر ایک ساتھ ایک گھڑی بھی ضائع ہو جائے تو یہ ایسا نقصان ہے کہ انسان پہ اس کا کوئی نعمت بدل بھی نہیں اور نہ انسان اس کی تلافی کر سکتا ہے. کوئی عمل، کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی تلافی کی جا سکے، نہ ہی کوئی اس کی قضا ہے. تو اس میں بہت ہی انسان کو ہوشیار اور سمجھدار رہنا چاہیے. اسی غرض سے رمضان سے کچھ دن پہلے اس کی تیاری کے عرض سے کہ ہمارے ذہن اور ہمارے وجود اس کے لیے تیار ہوں اور سمجھ سکیں. یہ چند باتیں ہیں اور ہیں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دہرا رہے ہیں ہم لوگ، جانتے سب ہیں کہ بھئی اس کی کوئی گھڑی بھی ایسی نہ ہو، کوئی ساتھ ایسی نہ ہو جو ہم ضائع کریں. ہر وقت کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ انسان اپنے آپ کو منسلک رکھے. یہ تو سمجھنا ہے کہ اگر انسان سوئے بھی تو اللہ تعالیٰ اس سوئے نے بھی انسان کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت عظیم گھڑی ہیں، لمحات ہیں انسان کے لیے، بالکل سوچی بھی انسان کس کو ضائع کر سکے گا. اور وہ حضرات بھی جو یا معذور ہیں روزہ رکھنے سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہوتے ہیں ایسے، تو یہ مطلب نہیں کہ باقی رمضان کا ضائع ہو گیا ہے. تو ایک شرعی عذر ہے، روزہ نہیں رکھ سک رہے، لیکن باقی عبادات تو مکمل کر سکتے ہیں. کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے وقت کو عبادت کے ساتھ منسلک رکھیں، اس کو جاری رکھیں آہستہ سے، جو بھی عبادت انسان کر سکتا ہو. لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ویسی ہے، اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو عبادت تو پوری کریں. خاص طور پر ایک چیز کا تو بہت ہی اہتمام ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم بحیثیت انسان کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، نہ سمجھ ہیں، کمزور ہیں، نہ تواں ہیں، اور ضروریات کے اندر تو ڈوبے ہوئے ہیں. ایک سانس بھی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. ہر وقت کسی نہ کسی ضرورت کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ خالق ہے، مالک ہے، دینے والا ہے، بے نیاز ہے، لامحدود ہے، جو چاہے دے انسان کو عطا فرما دیتا ہے. تو ایک مانگنے والا ہے اور ایک دینے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں ایک عجیب عبادت رکھی کہ اس عبادت کے تحت بندہ جو چاہے اپنے رب سے مانگ لیتا ہے اور لے لیتا ہے. وہ عبادت جو ہے وہ دعا ہے، ایک ایسا رشتہ ہے مانگنے والے کے نزدیک اور درمیان میں اور دینے والے کے درمیان. الحمدللہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت رکھ دی ہے دعا کی، کہ جیسی بندہ کتنی حاجت مند ہو، کتنے ہی اس کو چھوٹے سے لے کے بڑا تک جو کچھ بھی چاہیے، اور دینے والا خالق ہے، جو چک مانگو دے گا. تو بیچ میں کون سی عبادت رکھ دی؟ صرف ایک دعا رکھ دی. بس دعا کرو، استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور تیرے درمیان ایک چیز ہے جو مجھ سے سب کچھ لے سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تیرا مانگنا. یہ رمضان کی گھڑیاں تو ایسی قبولیت کی ہیں کہ کوئی گھڑی بھی خالی نہیں کہ جو قبول نہ ہو. ویسے بھی عام دنوں میں دعا الحمدللہ قبولی قبول ہے، تو آپ کو جیسے پہلے بات ہوئی ہے، تو رمضان میں تو یہ ایسی خاص اللہ کی عبادت ہے کہ کیا نہیں چاہیے ہمیں، ہر وقت چاہیے، کیا چیز نہیں چاہیے بھائی، ہر وقت और अल्लाह के नजदीक तो कुछ छोटी चीज मांगी थी, थोड़ी समान है हमने कि ये छोटी चीज है ये बड़ी चीज है, नहीं हमने लेने उससे और देने ही उसने, ये तो नहीं अल्लाह ताला को बड़ी चीज देता है अब छोटी चीज के लिए हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, उससे एप्लीकेशन लिखानी पड़ेगी, फलां डिपार्टमेंट है फलां जगह से मिलेगा, वो तो जात एक ही है, सुई मांगो तब भी वो देगा, पहाड़ मांगो तब भी वो देगा, देना तो उसी ने, तो वो तो एक ही है जो देता है, वाहिदुल्लाह शरीक है जिसने देना है। हम मांगने वाले हैं तो भाई हमें तो जो कुछ भी चाहिए किससे मिलना है, तो एक चीज का ख्याल रखना चाहिए मांगते हुए। हम क्या गलती करते हैं कि भाई देर से मांगते हैं, नाराज ना देर से मांगते हैं, पहले क्या अपने अकल के दौड़ घोड़े जो दौड़ाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं बीमार हो गया कहीं मेरे सर में दर्द हो गया तो सबसे पहले भागूंगा पेनाडोल आईफो जो कुछ गोलियों की तरफ, क्या है फटाफट सर का दर्द सही हो, ऐसी होता है ना, और कोई किसी चीज की जरूरत है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उस चीज की तरफ भागते हैं कि हम खुद हल करें मामले को, इसको कंट्रोल करें, जोर लगाते हैं पूरा, और जब थक जाते हैं जब पूरा नहीं होता ये कहते हैं चलो यार दुआ ही मांग ली चलो यार नमाज ही पढ़ने किसी अल्लाह वाले के पास चले जाए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कितना वक्त तूने जाया किया, पहले दुआ और बाद में असबाब, क्योंकि असबाब भी उसी की तरफ से आएंगे, तो पहले किया सर में दर्द अल्लाह ताला मेरे सर में बहुत सख्त दर्द है करम फरमाइए सर दर्द में दूर कीजिए, तो इसका मतलब है हमें गोली से टेबलेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने मांग उससे लिया, अब एक असबाब उसने रख दिया किसे करो, तो हो सकता है इसमें याद रखें मैं आपको बताऊं कि अल्लाह सुबहान तला बगैर असबाब को ही दुआ कबूल फरमा लेते हैं और शायद गोली ना खाना पड़े। इसमें क्या फर्क है, छोटी सी चीज है लेकिन आप गौर से करें, यकीन कम है, यकीन कम है, यकीन गोलियों पर है, यकीन जो हमें नौकरी देता है उस पर है, यकीन हमें इंसान पर है, यकीन हमें दूसरी चीजों पर, यकीन अल्लाह से हो जाए तो आपको पता है कि मेरे पैसा जो है मेरे बाप ने देना है, मैंने उससे मांगना है और मुझे जेब से निकाल के पैसा देना है अगर मैं मांगूंगा, तो क्या बड़े भाई के पास जाएंगे बाप के पास जाएंगे किसके पास जाएंगे, क्योंकि पता है इसने देना है डायरेक्ट के पास जाओ, तो अगर हमारा यकीन हो कि देना मेरे मौलाना है तो इधर भी लात उधर भी लात सीधा उधर डायरेक्ट अस्तजिब लखू सीधा, ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है, तब भी कोई ऐसा वक्त पड़ जाए तो याद रखें पहले क्या करना है, पहले दुआ बाद में सबाब, थोड़ा कुछ हो जाए देख रहे हैं गम आ रहा है परेशानी आ रही है मुसीबत आ रही है सख्त जरूरत पड़ गई किसी चीज की कुछ भी हो गया पहले क्या करना है अपने रब की तरफ जाओ मौला ये सही कर इंशाल्लाह जाने से पहले अल्लाह ताला सही करवा देंगे, लेकिन यकीन कम है हमारा। आज हमाद रहमतुल्लाह का जमाना था और बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तो उनके जमाने में एक बहुत अमीर आदमी था कोई और बड़ा कारोबार ताजिर था, और जैसे इनके अंदाज होते हैं अमीर लोगों के और जहर वक्त जहर करने वालों, जैसी शाम का वक्त आता तो फिर उनके यहाँ महफिल जमती थी, सारे दोस्त अहबाब जमा हो जाते थे कारोबारी लोग बिजनेसमैन इधर उधर के सारे, और फिर करम तो सारी खराफात खाना पीना सब चलता था शहर तक चलता, उसके बाद खा पी के अपने जो कुछ तमाशे लगाने के बाद लेट जाते थे, सुबह फिर अपने काम पे चले गए, एक मामूल बना हुआ था, गुलाम और मांदी का जमाना था, तो उसका गुलाम भी था। एक दिन इत्तफाक ये हुआ कि खाने में देर हो गई बनने में, तो वो मालिक घबराया, उसने कहा भी इतने मेरे मेहमान आए हैं और मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो इनको मसरूफ किया जाए किस चीज़ में कि पेशते इसके कि हम अपना हमारे कारोबार शुरू हों और हिसाब किताब शुरू कर दें अपना, तो हमें चाहिए कि मैं इनको मसरूफ करूँ जैसे मेहमान के लिए किया था। उसने अपने गुलाम को बुलाया कहते भाई बात सुनो जल्दी जाओ जल्दी, और ये चार रियाल पकड़ो और मार्केट जाओ और जल्दी से बादाम और पिस्ता ले आओ ताकि मैं खाने से पहले इनको ये इस तरफ लगा दूं और शौक से खाते रहेंगे, और जब तक खाना बन जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद खाना वाना खाएंगे फिर अपने तमाशे शुरू कर। गुलाम के ठीक वो चार रियाल कह रहा हूँ वो धर्म चांदी का होता है अशरफी जो सोने की थी, वो धर्म ले गए गुलाम जो था मार्केट की तरफ अपने आके के हुक्म में, तो हस हमार रहमतुल्लाह उस जमाने के बुजुर्ग थे बहुत बड़े, उनकी मजलिस लगती थी उस आदमी के घर और मार्केट के दरमियान उनकी खानकाह थी जगह थी, जहाँ पे इनकी मजालिस लगती थी अल्हम्दुलिल्लाह रौनक होती थी शाम को, फर्क था, एक उनकी मजलिस लगती थी एक अल्लाह वाले की मजलिस लगती थी। गुलाम जो था वो जो चला तो उसने देखा मजलिस लगी हुई है, गुलाम समझदार था, उसने कहा चलो थोड़ी देर हो जाएगी जरा हजरत की बात ही सुनता चलता हूँ, शायद कोई काम की बात हो जाए दुआ में शामिल हो जाऊं मेरी आखिर समझ जाए। तो वो मस्जिद की तरफ चला पड़ा तो खड़ा हो गया, खामोशी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो गुलाम कहने लगी ये हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं होता। तो इसमें एक आदमी जो था कुछ बोल रहा था, वो आगे गया था सुना, वो आदमी कह रहा था मैं फकीर हूँ अल्लाह के वास्ते मुझ पर कुछ कर्म करें हजरत, बहुत सख्त दुश्वारी में हूँ, चार धर्म मुझे चाहिए, गुजाया चार धर्म दे दिए तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे बहुत सख्त जरूरत है, बेचारा मोहताज था। गुलाम देखता रहा, आदमी बैठे हैं सारे मजलिस लगी है, हजरत भी बैठे हैं, हजरत ने देखा उस आदमी की तरफ, हजरत की मजलिस में आए थे, बड़े बाहया होते हैं अल्लाह वाले थे कि खाली कैसे जाए आदमी, मेरी मजलिस में जो है कुछ तो ले जाए, कुछ ना कुछ जूते खा जाए, कुछ कुछ तो खाए। उसने कहा अच्छा, हजरत देखा उस फकीर को भी देखा चार धर्म मांग रहा था, उसने कहा बात यह है भाई अपने मुर्दीन से कहा कि कोई है जो उसको चार धर्म दे दे, जो इसको चार धर्म देगा तो चार दुआएं मैं उसको दे दूंगा, सौदा है सुभानअल्लाह। ये तो अकल वाली समझ सकते ना बात। जब उन्होंने ये बात कही तो सारे लोग बैठे थे तो गुलाम ने ठक जंप मारा बीच में, कहना हजरत ये ले चार रियाल मेरी तरफ से आप उसको दे दें। हजरत चार रियाल दे दिए, कह जब आपका वादा चार दुआएं, कहा बोलो दुआ करो। अब अल्लाह वाले के पास दुआ का ये भी एक, इसमें भी एक नुक्ता आपको समझाता चलूं, खुद भी दुआएं मांगे किसी अल्लाह वाले से भी दुआ करें, दोनों चीजें चलती हैं। अल्लाह वाले की दुआओं का भी अंदाज अजीब होता है, अल्लाह ताला सुनता है, ये भी यकीन रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की दुआएं बहुत अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो जब कोई ऐसा मौका मिल जाए उस मौके को भी जाया ना करें, याद रखें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके भी ऐसी दुआएं होती हैं कि बेअसबाब अल्लाह ताला अता फरमा देता है। मुझे एक वाक़ छोटा सा अपने हजरत का याद आ गया, टाइम तो बहुत थोड़ा है। हजरत की मजलिस में बैठे थे इसी तरह, ये वाक़ यहीं रखते हैं फिर आगे चलते हैं। दुआ की बात है कि देखें अल्लाह वालों के यहाँ कैसे दुआएं मिल जाती हैं, लेकिन अल्लाह वालों को तो ये चीज़ पसंद नहीं है कि जाके स्टोरी डाल जाए ये आप अल्लाह वाले हैं बस आप ही दुआ सुन सकते हैं, आप ही बस अल्लाह के करीब हैं, ये उनके लिए बायस शर्म हया की बात होती है, हम लोग चीज़ को समझते नहीं है। दुआ मंगवानी है सीधे कहना दुआ फरमा दे, ये बात है बहुत परेशानी है, लेकिन ये कहना जी आप अल्लाह वाले हैं और आप ही की दुआ कबूल की जाती है, हम तो आए आपकी यह इसलिए हैं कि आप हमारी दुआ कर दें, ये हकीकत में सुयदल है। इस लाइन में अदब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, यानी एक लफ्ज में पूरा अजथानी फरमाया कि ये तसव्वुफ जो है कुल अदब है, पहला कदम भी और आखिरी कदम भी अदब ही अदब है, ये जिक्र कराना बैठना ये सब जो है ये तो सेकेंडरी चीजें हैं। जो बाअदब हो गया इसमें पेशिक जाकिर नहीं है कुछ भी नहीं, जिसको अदब आ गया अपने हजरत से मिलने का, बात करने का, गुफ्तगू करने का, उसके मिजाज को समझने का, उसकी मजलिस में जाने का, उसके आने का, उसकी खिदमत करने का, वो कामयाबी कामयाब हो जाता है इसकी। क्योंकि तसव्वुफ की मजलिस में आपको ये बात बता रहा हूँ, सबसे पहले जो साली को सीखना चाहिए वो क्या चीज़, अदब सीखना चाहिए। और सुनना सारी जिंदगी की मेहनतें, याद बताऊं सारी जिंदगी की मेहनतें जिसने की होती हैं वो एक सेकंड में खत्म हो जाती हैं अगर वो बेअदबी कर दे, एक सेकंड में खत्म हो जाती है, इतनी एहतियात इतनी एहतियात, हम लोग उस चीज को समझते नहीं। और शेख तालिब अदब नहीं होता इसलिए लोग कुछ समझते नहीं इस बात को, वो बिल्कुल एक आम हैसियत से मिलना चाहते हैं इंसानों से तो हम भी वैसे शुरू हो जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता इस चीज का, उसको तो चाहिए ही नहीं, वो तो अपने आप को समझता ही नहीं कि मैं कुछ हूं, वो तो समझता ही कुछ नहीं, तो हम भी उसको सतह पे ले आते हैं। हमारा काम क्या है कि हम उसकी आजी को तवाजे को समझें, हमारा उसका मुकाबला डिफरेंट है, हम तो उसको अल्लाह वाला समझते हैं तो हम उसके साथ जो ट्रीट करेंगे उसी अंदाज में करेंगे, उसी आदाब के साथ करेंगे जो हमें सिखाए गए हैं शरीयत में कुरान में हदीस में, एक अल्लाह वाले का इस तरह अदब करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे बैठें, कैसे देखें, कैसे गर्दन झुकाएं, कैसे उठें, कैसे गुफ्तगू करें, कैसी अपने आप बात को पेश करें, यानी कि एक एक चीज़ जो है इसमें सारी की सारी अदब ही अदब है। और जिसने ये सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं रुक नहीं सकता, अल्लाह के कुर्ब पे पहुंच ही जाता है अवश्य। तो यार हजरत साहब की मजलिस थी, वो एक शख्स आया बुद्धू, हमारे वहाँ बलूचिस्तान है और बलूच हैं सारे लोग, बिल्कुल बुद्धू टाइप किस्म के लोग हैं जो उड़ के आते हैं, गधे पे बैठ के आते हैं, कोई ऊँट पे बैठ के आ रहा है, ऐसा हमारा इलाका ऐसा था बहुत पुराना। तो बुद्धू किस्म के लोग आते थे, देहाती सारा मजमा लगा था, हजरत हम भी बैठे थे, तो वो बुद्धू आया अंदर चीज़ा असलम से, वहाँ उनके यहाँ प्रोटोकॉल नहीं होता, वो बुद्धों की बातें, जितना बुद्धू बनता है वो इतने अजीम है। या नबी करीम साहब के पास साहबा कराम कहते हैं कि जब हम कोई बात पूछने की जरूरत नहीं कर सकते थे, अब हमने कोई मसला पूछना होता था या कोई चीज़ हमारे जहन में होती थी तो हम दिल में दुआएं करते थे अल्लाह ताला कोई बुद्धू आ जाए वो मसला पूछ ले हमारा काम बन जाएगा। ये मजलिस थी वहाँ की, तो बुद्धू बुद्धू ही होते हैं, वो आगे सीधा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सीधे शुरू हो जाते थे, तो वो दुआएं करते थे अल्लाह कोई आए, हम तो जरूरत हमारे पास तो अदब है बहुत बड़ा, हमें करना पड़ेगा कहीं बेइज्जती हो जाए, तो वो अदब की वजह से वो क्या करते थे, वो पूछते नहीं थे मसला। तो सहाबा किराम क्या करते थे, वो कहते हम दुआ करते थे कि कोई बुद्धू आए और हमारा मसला हल हो जाए, तो वो बुद्धू आ गया हजरत की मजलिस में, हम सब मजलिस लगी थी हजरत की खामोश मराकिब थे, कहना हजरत साहब अस्सलाम वालेकुम, अब मैं उसी जमाने में बात करूंगा, तर्जमा करता जाऊंगा, मजा नहीं आएगा बात का, ऐसे गुजराती से मिलती जुबान है हमारी सराय की, आ गए अस्सलाम हजरत साहब, वालेकुम सलाम, क्या हाल है सही, यंदा था अब आधा प्रोटोकॉल नहीं यहाँ पर, हाँ बाबा ठीक हूँ, हाँ भाई ठीक हूँ सब कर रहे, दुआ तो कर रहे हो, मैं दुआ तो करूँ मेरे लिए, हाँ क्या दुआ करूँ सब कर, मैं क्या दुआ करूँ, हज ही करने से हज की दुआ करो, ये सब देख रहे हैं, मैंने हज करना हज की दुआ करो, अब सुनने वाली बात देखेंगे, यकीन बता रहा हूँ आपको। तो वो क्या अच्छा साहब कहते हैं, हाँ पैसे हैं तेरे पास, पैसे हैं तो उसका जवाब सुने, सही पैसे हों तो तोड़े गोला तो उसने ये कहा तो सब हंस पड़े, हंस भी मुस्कान पड़े, कहते पैसे तो मैं आपके पास आता, आए किस लिए, दुआ करें आप, हंसा हंस पड़े, दुआ हाथ के लिए जो उन्होंने खड़े कर दिए दुआ के लिए, और हम भी उस सादत साल हज जाने की, तो हमारे साथ ही हज पड़ी था वो शख्स भी, तो यकीन इतना हो आदमी का, गुलाम ने कहा जी चाह मेरी चार दुआएं हजरत, यकीन था उसका, ये मांग रहा है, उसने हाँ वादा किया था तेरे से, क्या पहली दुआ, किसी पहली दुआ से जो मैंने खर्च किया है, दुआ करें कि डबल होके वापस मेरे पास आ जाए, अच्छा दूसरी दुआ ये बता रहा हूं, अल्लाह ताला से मांगने में कोई हेजिटेशन नहीं, अल्लाह मैंने सदका दिया 5 पाउंड थे, मैं तो जलेबी के लिए रखे थे 5 पाउंड और मैंने दे दिए इसको, मुझे तरस आ गया, कह रहा है कि मुझे बहुत कम है, अब मैंने तो 5 पाउंड तेरी दी, मुझे 10 पाउंड चाहिए, अल्लाह 10 ही देगा, घबराई मैंने 5 दिए अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, तुमने सदका किस, नहीं अल्लाह ताला मैंने 5 तेरे नाम पे दिए और मैंने खाने थे जलेबी है, अब तुम मुझे 10 करके वापिस दे, इंशाल्लाह 10 ही आ जाएंगे आपके जेब में, ऐसे मांगे अल्लाह से। तो गुलाम क्या कहता है कि जो पैसे मैंने दिए हैं मेरे तो नहीं थे, पैसे वापिस आए, उसको नेमत बदल दे मुझे। अच्छा दूसरी दुआ हजरत कहते हैं, ये नहीं कहा दूसरी दुआ, दूसरी दुआ सीधी कि मैं गुलाम हूं, जिंदगी मेरे गुलामी की है, तो मैं आजादी की जिंदगी चाहता हूं, मुझे आजाद फरमा दे, दुआ कर। तीसरी दुआ, ये तीसरी दुआ जी मेरा आखा जो है, मेरा आखा है माल भी उसी की तरह मैंने दी है, तो उसके लिए दुआ करानी है कि जी वो बड़े खराब आदमी, जैसी शाम होती है फजूल बातों में चला जाता है और मजमे लग जाते हैं, तो बिल्कुल गाफिल है, उसकी दुआ करें हिदायत हो, उसको तौबा नसीब हो जाए, उसको भी उसके साथियों को, हाथ उठा दिया आपने, कहते एक और दिया, 4 गई थी आपने, चौथी को गुलाम कहते हैं, हाँ चौथी, कहते चौथी तो ये जी अल्लाह ताला आपकी बख्श भी फरमा दे, मेरी भी फरमा दे, और जी जितने आपके साथी इनकी भी बख्शिश फरमा दे, और जो मेरा आखा है उसकी भी बख्शिश फरमा दे, और जो उसके साथी उनकी भी बख्शिश फरमा दे। उन्हें कहा बख्शिश का मामला तो अल्लाह करेगा, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो उसका काम है, लेकिन मैं तो कह रहे थे मैं दुआ कर देता हूँ, हम दुआ कर देना मुआ फिर चल पड़ा। अब जो वहां से मजलिस से निकला था, अब उसको होश ठिकाने हुए, 4 तरम भी गए और उसके गुलाम का भी मौका उसने मारेगा, तो उसको होश आया क्योंकि अल्लाह वाले की मस्जिद में उसको और शान होती है, वहां तो खुदा ही खुदा होता है, सब बुला होता है, और जब बाहर निकलता है तो पता चलता है वो मारे गया, अब तो ये काम रह गया, अपना रह गया, फिर उसको होश आना ठिकाना शुरू होता, नशा निकलता ना, वो उसने तुड़की मारी भागा, ओहो देर भी होगी बड़ा, अब मालिक जो बाहर खड़े, वो ये जमाना गुलाम मालिक का था, आजकल का नौकर तो बीबी अकड़ जाता है, उसने जब देखा मालिक के दरवाजे पे खड़ा है तो वो दूर खड़ा हो गया, और दूर हो कहने लगे आका आका एक मेरी बात सुना, एक मेरे पहले मेरी बात सुना फिर आप मुझे मारना, फिर आप फिर नाराज होना, और आका की तो जिंदगी बदल चुकी थी, वो आका कहाँ था क्योंकि दुआएं पहुंच चुकी थी। ऐसे अल्लाह सुन लेते हैं मेरे भाई, बात समझ आई, ये समझाने की बात है, समझने की, इस यकीन से रमजान आ रहा है हम दुआएं ऐसे ही मांगे, कोई चीज ऐसी ना हो, कोई दुश्वारी ऐसी ना हो, कोई बीमारी ऐसी ना हो, कोई परेशानी ऐसी ना हो, दर्जा मांगे तो जन्नत का आला दर्जा मांगे, नबी को कुरु मांगे, जो मांगना हो बेधड़क मांगे, और मांगने वाली चीज तो वो है जो अख्तियार में है वो नहीं, जो हमारे अख्तियार में नहीं वो मांगे, तब तो मजा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से मांग रहे हैं, कुछ किसी छोटी चीज तो नहीं मांग रहे। गुलाम ने क्या आज तो पिटाई होगी, उसने कहा आगे आ जाए आगे, किसी मुझे मारना नहीं, आगे तो आ, कहते क्या बात है, बात क्या हुई, कहते बात ये हुई है, तो बिल्कुल चेंज देखा उसने अपने मालिक को, रोब दबदबा वो चौंक खत्म, और एक अजीब सा नूर उसके चेहरे पे, उसने कहा आखिर बात ये हुई है, मैं जो वहां गया वहां की हजरत हमार की मजलिस गई थी, उसने कहा फिर, कहते वो दरम मैंने वहां दे दिए, फिर तुझे क्या दिया, कहते चार दुआएं दी हैं, कहते क्या दुआ थी पहली, आखिर ने कहा जी पहली दुआ तो ये थी मैंने जो चार दरम दी हैं मुझे उसका डबल होके मिले, कहते जा खजाने से 4,000 दरम ले ले, इतनी देर भी नहीं कबूल होने में, बेचा मेरे खजान चार दरम ले। दूसरी दुआ, कहते दूसरी दुआ हजरत मेरी ये थी कि किसी तरह से मैं आजाद हो जाऊं, कहता अल्लाह को गवाह करता हूं और तुझे मैं आजाद करता हूं अल्लाह के, मुझे खुलाऊ किसी क्या होगा मेरे आका को, कहते तीसरी दुआ क्या थी, कहते तीसरी दुआ बताते मुझे डर लगता है, कहते नहीं बता क्या दुआ थी, कहते ये आप खराफात करते हैं मैं इसकी दुआ की आप तो अल्लाह तौबा नसीब फरमाए और आपके साथियों पर, कहता गुलाम तू गवाह हो जा कि मैं इसी वक्त तौबा करता हूँ, आपके बाजी कभी नहीं होगा, और सीधा अपने खास साथियों के पास गए और कहने का मैं तो तौबा हो गया हूँ, भाई उस जमाने की तुम दोस्त हो, अगर मेरे साथ दोस्ती चलाना चाहते हो तो तुम भी तौबा कर लो, हमारी दोस्ती खत्म, उसका ये कैसे उस समय आपको छोड़ दें, गंदे जमाने में आपके साथ थे तो अच्छे जमाने में आपके साथ रहेंगे, हम भी तौबा करते हैं और आपके साथ। अब चौथी दुआ जो थी वो क्या थी, उसने जी बख्शिश की थी, चौथी दुआ बख्शिश की थी, और वो किसने करनी थी, अल्लाह ने करनी थी, देखते चौथी दुआ बख्शिश की तो उसने मांगी थी, और वो तो अल्लाह को पता है कि कहां तक पहुंची, तो गुलाम भी चुप रहा, वो जो आका था कहता हाँ जी तो जाहिर इस पे तो हमारा कुजोर ही नहीं चलता, बट कहते ये तो मेरा काम ही नहीं है, तीन दुआएं तो मैं तुझे फौरन आता होगी सब कुछ, तो ये तो मेरे अख्तियार में नहीं है, उसने कहा मालिक ने कहा ये अल्लाह पे छोड़ दे। रात को सोया सुभान अल्लाह कहां और कहां देखें ख्वाब, अल्लाह की ज़ियारत हो गई उसको, अल्लाह ताला खुद उससे फरमाते हैं क्या है फला जो काम तेरे अख्तियार में था तूने कर दिया था, तो क्या जो काम मेरे अख्तियार में मैं नहीं करूंगा, जहां मैंने सबकी बख्शिश कर दी जो मांगा, तो ये यकीन हो मेरे भाई रमजान मुबारक आ रहा है, इतनी इतनी देखें अजीम अल्लाह पाक ने हमें इबादत दी है, कितनी अजीम इबादत है, क्या सी मांगना, इसमें मांगना है, सारी जिंदगी हम भागे भागे फिरते हैं मुसीबतों के अंदर परेशानियों के अंदर, एक ऐसा अल्लाह ने हमें महीना दे दिया हर घड़ी वजू हो ना हो सोते उठते बैठते, क्योंकि ये मगज है, इसको क्या कहा है, ये जितनी भी इबादत हम करेंगे कुरान तलावत जिक्र और फिक्र तबलीग जो कुछ भी हम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सबका ये मगज है, मगज कुछ कहते हैं जैसे बादाम के अंदर मगज होता है, अगर मगज निकाल लें तो छिलका कोई खाएगा, अखरोट के अंदर मगज होते हैं उसको उसमें क्या रह गया, अगर मगज हम निकाल लें कुछ भी नहीं, अखरोट तो ही कुछ नहीं है, आम के अंदर से गूदा निकाल लें आम की क्या हैसियत रहेगी, तो इसी तरह अगर इबादत में ये मगज निकाल लें तो इबादत फूकी रह जाएगी, तो इस मगज को कभी ना भूलें, इस मगज के साथ जब भी झटका पड़े जिंदगी का या ना पड़े एक आदत बना लो कि हमने अल्लाह से मांगते ही रहना है, और मांगने की एक चीज है, हम क्या मांगते हैं 40 दुआएं रब्बाना पूरे टीवी हमने किताब रब्बाना आते ना फिर दुनिया से रब्बाना तक कभी, ये क्या मांगना हो, ये तो पढ़ना हो गया, ये दुआएं क्या कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, एक होती है दुआएं मांगना, दुआएं मांगना और है पढ़ना और है, हूं यही दुआएं बेशक, लेकिन जिस वक्त पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि मैं मांग अल्लाह ताला से रहा हूं, आपका दिल और रूह मुतवज्जो हो मुकम्मल तो अल्लाह की जात की तरफ, और आपको पता हो कि जैसे आप किसी के पास कोई चीज मांगने जाते हैं और आपको उम्मीद नहीं होती कि बड़ा नहीं देगा आपको, और आप उससे मांगने के लिए बहुत बेकरार हो कि यह चीज मुझे मिल गई तो मेरा काम बन जाएगा। मिसाल के तौर पर हज का आपको टिकट चाहिए और टिकट आपका बन नहीं रहा, आप कहीं फला आदमी के पास चलो वो टिकट पूरी कराता है, पासपोर्ट सही करा देता है, उसके पास चलो शायद वो हमारा काम कर दे, शायद बात बन जाए, उम्मीद कुछ नहीं हो रही, वो आदमी कहता चल जा कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ लंदन तेरा पासपोर्ट लेके जाता हूँ इंशाल्लाह करा दूंगा, तो कितनी खुशी आपको हो कि हमारा काम हो गया। तो इसी तरह है कि अल्लाह से इतनी इतनी उम्मीद के साथ जाए इंसान कि हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह से मांगे हमारा काम पूरा नहीं होगा। यकीन जैसे बुद्धू आया, उसने आगे हजरत हज करना है, कितनी बड़ी बात उसने की, पैसा तो मैं आपके पास आता हूँ टिकट कटा लेता ना, आए इसलिए कि दुआ करें ताकि मुझे असबाब ही नाजिल हो जाए अल्लाह की तरफ से। तो इंशाल्लाह ये है उम्र, ये हमारे जो रमजान आ रहा है इसमें इस इबादत का खास ख्याल रखा जाए। देखें हजरत उमर रदी अल्लाह ताला तशरीफ रखते थे, एक इसमें अमल भी आ जाएगा, जहन में एक बात आ गई है बताता चलूं, इस अमल को भी करें और एक मिसाल भी मिलती है। हजरत उमर कितनी बड़ी शख्सियत थे, तो हदीस हुई नबी पर इरशाद फरमाया कि जो कुल हुवल्लाह अहद के कुल इखलास 10 दफा पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला उस आयत की शान के मुताबिक एक महल जन्नत में बना देते हैं। कितनी दफा पढ़ना है? 10 दफा, सिर्फ 10 दफा। हदीस में नबी फरमा रहे हैं वो हज़रत उमर तशरीफ रखते हैं, जिसने 10 दफा कुल हुवल्लाह इखलास पढ़ ली उसका जन्नत में उसकी शान के मुताबिक क्या हो गया? एक महल। अच्छा हमें क्या मिला? हर इंसान को एक जन्नत में महल मिल गया। जैसे हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला की पता चला तो उन्होंने क्या, या अल्लाह या रसूल सल्लम अगर ये तो बहुत मामूली है, ये तो बहुत जल्दी हम तो हर वक्त पढ़ सकते हैं तो हमारे तो बहुत महल हो जाएंगे। तो जवाब दिया नबी ने कि उमर तू चाहे जितनी दफा पढ़ ले, जितनी दफा पढ़ ले, अल्लाह सुबहाना तला महल बनाने से तंग नहीं आएगा तेरे। तो मेरे भाई इसका भी मामूल रखें रमजान में, ये चलते फिरते 10 का गिनती पूरी करते रहे और कुछ नहीं, मामूल बना दें कि हर नमाज के बाद हमने 10 दफा सूरह इखलास पढ़नी है पूरी रमजान के अंदर। अल्लाह ताला ये हमें कबूल फरमाए और जो हमने कहा अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक।